हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना की बात सुनकर आदित्य हैरान होकर उसकी ओर देखता रहा। आदित्य उसे अपने कमरे में ले आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना की बात का क्या जवाब दे। उसने सच में ड्रिंक की थी, इसलिए चुपचाप उसने सुनैना को बिस्तर पर लिटा दिया और उससे थोड़ी दूर खड़ा हो गया। बस बोलती बंद हो गई। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं हूँ, संभाल लूंगा और ये वो, लेकिन जैसे ही सच से सामना हुआ तो नजरें फेर कर खड़े हो गए, हमेशा की तरह। रहने दो, तुमसे मुझे कोई और उम्मीद भी नहीं है। आदित्य का चेहरा घुमाकर दूसरी ओर हो जाने पर सुनैना ने ताना मारते हुए तंजिया लहजे में हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। वह बिस्तर पर उठकर टेक लगाकर बैठ गई। हाँ, माना कि मैं ड्रिंक करता हूँ और नशे में भी हूँ इस वक्त, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट मेरा नहीं, तुम्हारा हुआ है और मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम तो हमेशा की तरह ही कुछ न कुछ सुना देती हो। सुनैना के ताने पर आदित्य चुप नहीं रह सका। उसने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, फिर आखिरी बात बोलते बोलते थोड़ा शांत हो गया और एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, वह मेरा एक्सीडेंट इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान किसी और बात। आदित्य की बात सुनकर सुनैना भी बोलते बोलते रुक गई। आदित्य के एक्सीडेंट के बारे में बोलने पर उसे एक्सीडेंट की वजह और विराज का प्रपोज करना सब कुछ याद आ गया। हाँ बोलो, बताओ ना, किस वजह से हुआ एक्सीडेंट, वही तो पूछ रहा था मैं हॉस्पिटल में भी, और इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आता। सुनैना के चुप हो जाने पर आदित्य ने कहा, ये क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है मुझे इसकी। आज से पहले तो कभी इसने इतना प्यार, हमदर्दी और इतनी फिक्र नहीं दिखाई मेरे लिए। मुझे तो लगा था याद ही नहीं रहती हूँ मैं इसे, लेकिन ऐसे एकदम अचानक से इतनी फिक्र, अब क्या बताऊँ मैं इसे। वह विराज वाली बात तो बता नहीं सकती, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा सुनकर, या फिर बता देती हूँ क्योंकि उसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं। आदित्य के पूछने पर सुनैना अपने मन में ये सारी बातें सोचती रही और बीच बीच में आदित्य की ओर देखती रही। बोलो भी, अब क्या सोचने लगी। सुनैना को चुपचाप सोचता हुआ देखकर आदित्य ने फिर पूछा। सुनैना कुछ बोलती उससे पहले ही उन दोनों को किसी के कमरे की ओर आने की आहट सुनाई दी। दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी दरवाजे से सुनैना का भाई अरुण और उसके साथ गीता अंदर आते दिखे। शायद वह उसे कमरे तक छोड़ने आई थी। अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है। सुनैना अपने भाई अरुण को देखकर हैरान रह गई। उसे अरुण के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि उसके घर वालों और दोस्तों में से किसी को भी उस और आदित्य के घर का पता नहीं है। फिर अरुण यहाँ कैसे आ गया और उसे इस हालत में देखेगा तो बहुत कुछ पूछेगा। सुनैना अभी ज्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं थी। आपसे ही मिलने आया हूँ दी, नहीं आ सकता क्या, और आपके एक्सीडेंट का सुनकर मुझे बहुत फिक्र हो गई थी आपकी। वो तो अच्छा है जीजू ने फोन करके बता दिया था आपके बारे में और यहाँ का पता भी। सुनैना के पूछने पर अरुण ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। आदित्य ने अरुण को बताया था, ये सुनकर सुनैना ने आदित्य की ओर देखा, लेकिन आदित्य ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे उसने सुनैना का देखना नोटिस ही ना किया हो। वह कमरे से बाहर जाकर गीता से बात करने लगा, शायद सुनैना के खाने पीने और अरुण के नाश्ते के लिए। गीता के जाने के बाद आदित्य भी सुनैना और उसके भाई को अकेले में बात करने के लिए वापस कमरे में नहीं आया। सिर्फ एक बार अंदर झांक कर देखा और फिर अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस हल्की सी चोट। अरुण को फिक्रमंद देखकर सुनैना मुस्कुराती हुई बोली, आपके एक्सीडेंट की बात पता चलने के बाद कितने कॉल मैसेज किए मैंने आपको दी, लेकिन आप अपना फोन भी चेक नहीं करती, और ये लेफ्ट हैंड में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और आप इसे हल्की सी चोट बोल रही हैं, ध्यान कहाँ रहता है आपका और कैसे ये एक्सीडेंट। अरुण सुनैना के बिस्तर के पास आकर बैठ गया और शिकायती अंदाज में बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे अरुण, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, तुझे सूट नहीं करता बिल्कुल भी, और अकेले आया है क्या तू। अरुण के सवाल सुनकर सुनैना बात बदलते हुए पूछी। उसे पता था कि अरुण अकेले ही आया होगा, उसकी सौतेली माँ और पिता यहाँ तक आने से रहेंगे और वह नहीं चाहती थी कि वे यहाँ आएं। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, तू बता तेरी स्टडीज कैसी चल रही है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही तो है दी, बस अभी शुरू हुआ है, अभी कहाँ स्टडीज, और आप तो जानती ही हो मुझे, अरुण ने लापरवाही से जवाब दिया। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, हाँ पता है तेरा पढ़ाई लिखाई से कभी इतना ज्यादा वास्ता नहीं रहा, बस जैसे तैसे तो 10th और 12th कंप्लीट की है तूने अपनी। अरुण और सुनैना दोनों ने आवाज़ पहचान ली। वह आवाज़ सुनकर दोनों खुश होते हुए दरवाजे की ओर देखकर एक साथ बोले, नैना दी आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, मतलब अब इतनी बुरी बड़ी बहन भी नहीं हूँ मैं कि अपनी छोटी बहन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी ना आती मैं। और बता, कैसे हुआ ये? उन दोनों के पूछने पर नैना ने मायूसी से कहा। सुनैना को इस हालत में देखकर उसे भी दुख हुआ, वह भी कमरे के अंदर आने लगी। आपको भी बता दिया आदि ने? नैना की बात सुनकर सुनैना ने अजीब सा चेहरा बनाकर धीमी आवाज में पूछा, हाँ बता दिया तेरे पति ने मुझे भी, लेकिन तू ऐसे सड़ी हुई सी शक्ल बनाकर क्यों पूछ रही है? नहीं आना चाहिए था क्या मुझे यहाँ पर? वैसे हाथ तोड़कर बैठी है अपना और बता भी नहीं रही कैसे हुआ ये सब? सुनैना के पूछने पर नैना ने बताया और उसके बारे में भी पूछा। अरे नहीं, इतने दिनों बाद आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ऐसे क्यों बोल रही है आप? मुझे तो बस उम्मीद नहीं थी कि आप सबको पता लग जाएगा मेरे इस एक्सीडेंट के बारे में, इसलिए। और कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस तो छोटा सा माइनर एक्सीडेंट है। सुनैना ने अपनी चोटों का दर्द छिपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अरुण बोला, हाँ नैना दी, मैं भी इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, लेकिन कुछ नहीं बता रही सुनू दी मुझे भी। चल अब बहुत हो गया तेरा ये नाटक, बता सीधे सीधे कैसे हुआ और कहाँ पर, और अपना मोबाइल फोन कहाँ रखती है तू? ये बात पता चलने के बाद मैं इतनी देर से तेरा मोबाइल नंबर ट्राई कर रही थी, कॉल और मैसेज सब कर रही थी, लेकिन नो रिस्पांस। अरुण की बात सुनकर नैना ने सीधे सीधे पूछा और उसके मोबाइल फोन के बारे में भी। नैना की बात सुनकर सुनैना अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी, वह उसे अपने पर्स में मिला। उसके मोबाइल फोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस, मिस कॉल और मैसेज थे। वह बोली, अरे दी, मुझे ध्यान ही नहीं था और ना ही टाइम मिला मोबाइल देखने का इन सब में, और फिर कॉलेज से वापस आते वक्त एक कार से हल्का एक्सीडेंट हो गया। सुनैना ने आधी अधूरी बात अरुण और नैना को बता दी। विराज के प्रपोज करने वाली बात वह उन दोनों को नहीं बताना चाहती थी उस वक्त। क्रमशः